नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का उद्बोधन ज्योति कभी बुझेगी नहीं।
जी, ये उन सभी परिजनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो खुद को पूज्य गुरुदेव और माता जी के मिशन का, उनके परिवार का हिस्सा मानते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी ने जो आश्वासन दिया है, जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वो जो आध्यात्मिक ज्योति की बात की है जो कभी बुझती नहीं, उसको समझ सकें।
हाँ, और इसकी शुरुआत में वो मिनी वसंत पर्व का जिक्र आता है।
हाँ, वो क्यों हुआ था? शायद इसलिए कि जो लोग पहले नहीं आ पाए थे वो भी आ सके।
जी, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि वो गुरुजी के चरण स्पर्श से, उनके सानिध्य से वंचित रह गए।
अच्छा, फिर माताजी एक बहुत ही प्यारा आश्वासन देती हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब परिजनों के लिए।
हाँ, वो टिटहेरी वाला उदाहरण, जैसे वो अपने अंडों की रक्षा करती है ना पूरी ताकत से।
हाँ,
वैसे ही वो और गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं एक अदृश्य कवच की तरह।
सही बात है, और इसी से जुड़ा वो कमाऊ पूत का उदाहरण भी है।
हाँ, कि जो परिजन ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं, मिशन में ज्यादा सक्रिय हैं, तो गुरु सत्ता का ध्यान, उनकी शक्ति उन पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है,
मतलब उन्हें ज्यादा मदद मिलती है आगे बढ़ने में।
बिल्कुल, और वो खिलौने वाले कारीगर की कहानी भी इसी से जुड़ती है।
हाँ, वो कहानी तो सीखने वाली है। पिता रोज बेटे के काम में कुछ सुधार बताता था
और बेटा सीखता गया, लेकिन जिस दिन बेटे को लगा कि अरे मैं तो पिता से भी अच्छा बनाता हूँ, और पिता की सलाह उसे टोका टाकी लगने लगी।
तब पिता ने क्या कहा?
पिता ने कहा, बस बेटा, तेरी तरक्की यहीं रुक गई।
ये तो सीधी से बात है कि विनम्रता कितनी जरूरी है, खासकर जब आप किसी से सीख रहे हो।
हाँ, वो अहम कि मैं सब जानता हूँ, ये भाव आते ही सीखना बंद हो जाता है। बड़ों का मार्गदर्शन इसीलिए जरूरी है।
सही कहा।
और इसी विनम्रता से बात आगे बढ़ती है मार्गदर्शन की प्रकृति पर। वंदनीय माता जी ये साफ करती हैं कि देखिए, भले ही वो स्थूल शरीर में न रहें।
हाँ, ये बात बहुत लोगों के मन में थी शायद।
जी, उन्होंने अफवाहों का खंडन भी किया कि गुरुजी शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जलाई हुई ज्योति, उनका मार्गदर्शन, वो कभी नहीं बुझेगा, वो सूक्ष्म रूप से हमेशा साथ रहेंगी।
सूक्ष्म रूप में मतलब शरीर ना होते हुए भी?
हाँ, उनका कहना था कि स्थूल शरीर की तो सीमाएं होती हैं, पर सूक्ष्म रूप में रहकर वो और भी ज्यादा और असरदार तरीके से काम कर पाएंगे, जैसे छोटा सा बम कितनी तबाही मचा सकता है।
अच्छा, तो सूक्ष्म की शक्ति ज्यादा है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है अखंड दीपक का महत्व।
हाँ,
वो उसे अपनी सबसे कीमती पूंजी बताती थी।
हाँ, कि उनकी आत्मा वहीं निवास करेगी।
जी, वो सिर्फ एक दिया नहीं है, बल्कि परिजनों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का एक जीता जागता स्रोत है, उनकी भौतिक अनुपस्थिति में भी एक कनेक्शन।
ये सब सुनकर समर्पण की बात मन में आती है। वो कहानी है ना, जब शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे अपने जैसा बना लो।
हाँ, और गुरु का जवाब कितना गहरा था, पहले तिनके जैसा बनो, अपना मैं, अपना अहंकार मिटाओ, खुद को पूरी तरह सौंप दो,
जैसे अर्जुन ने खुद को कृष्ण के आगे रख दिया था।
बिल्कुल, वंदनीय माताजी तो खुद को और गुरुदेव को एक प्राण दो शरीर कहती थी, उनका जुड़ाव कितना गहरा था।
और इसी समर्पण के आधार पर वो सबसे जुड़ने को कहती हैं।
हाँ, या तो मिशन के दाहिने हाथ बनो, मतलब पूरा समय दो,
या फिर बाएं हाथ।
जी, जो अपने साधन और थोड़ा समय दे सकें, मतलब किसी न किसी रूप में जुड़ो जरूर, अपनी छोटी सोच से बाहर निकलो, समाज और देश के लिए कुछ करो।
ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है मतलब?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक विचार क्रांति का भी आह्वान है, जैसे दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ बोलना।
हाँ, उन्होंने वो तीन बेटियों की आत्महत्या का जिक्र किया था दहेज के कारण, कितना दुखद था वो।
बहुत दुखद, और उनका कहना था कि ये बदलाव डंडे से नहीं आएगा, विचारों से, सही बात कहने से आएगा, जबान से क्रांति लानी होगी।
और इसी क्रांति का एक बड़ा हिस्सा है नारी जागरण।
जी, उन्होंने तो 21वीं सदी को नारी सदी कहा।
हाँ, कि स्त्रियों को कमजोर या अपंग न समझें, उन्हें पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं,
ताकि समाज का ये आधा हिस्सा पूरी तरह सक्रिय हो सके।
सही बात, और ये सब करने के लिए मतलब समर्पण हो, विचार क्रांति हो, नारी जागरण हो, इन सबके पीछे क्या है?
श्रद्धा और निष्ठा, इसके बिना तो इंसान, समझिए, आध्यात्मिक रूप से जड़ है, बेजान है।
मतलब जैसे बर्तन खाली हो तो उसमें पानी कहाँ से आएगा?
बिल्कुल, गुरु का अनुदान भी पात्रता देखकर ही मिलता है, जितना बड़ा पात्र उतना अनुदान। एकलव्य को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, उनका समर्पण ही उनकी शक्ति बना।
गुरुदेव का अपना जीवन भी तो उदाहरण है।
हाँ, आजादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के काम किया, बाद में पेंशन तक नहीं ली, कहा कि काम देश के लिए किया था, पेंशन के लिए नहीं।
ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है।
और ये समय की पुकार पहचानने वाली बात भी है, जो सही समय पर जिम्मेदारी नहीं समझते वो बाद में पछताते हैं। जैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे पर समय पर पेंशन के लिए कहा नहीं तो रह गए।
हाँ, ये बात तो है।
सच्चा गुरु शिष्य का रिश्ता तो जन्मों का होता है। अगर श्रद्धा ना डगमगाए, मुश्किलों में भी गुरु साथ देते हैं, भले दिखे नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई पीठ थपथपा रहा हो, हिम्मत बंधा रहा हो।
ये एहसास ही बहुत बड़ी ताकत है।
और ये समर्पण सिर्फ अकेले का नहीं है, ये परिवार के स्तर पर भी चाहिए। जैसे विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा था दशरथ जी से,
हाँ, यज्ञ की रक्षा के लिए,
और उसी समर्पण ने राजकुमारों को भगवान बना दिया। इसीलिए वंदनिया माता जी हर परिवार से कहती थीं कि कम से कम एक सदस्य को मिशन के लिए समर्पित करें।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार क्या निकलता है?
सार यही है कि मार्गदर्शन की ज्योति तो जलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं। गुरु सत्ता का प्यार, उनका संरक्षण हमेशा रहेगा।
लेकिन जिम्मेदारी हम पर है, अनुयायियों पर।
जी हाँ, हमें पूरे समर्पण से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाकर नारी जागरण जैसे कामों से इस मिशन को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने खुद को गुरुदेव में कैसे मिला दिया था, वो उदाहरण कितना सुंदर है। तेल वो है तो बाती मैं हूँ।
बिल्कुल, जैसे तेल और बाती मिलकर ही रोशनी देते हैं, वही एकता, वही समर्पण वो अपने बच्चों में, अपने परिजनों में देखना चाहती थीं।
और अंत में वो एक सवाल छोड़ जाती हैं सबके लिए।
हाँ, वो खुद से पूछने को कहती हैं कि तुम असली हो या नकली।
ये तो खुद को जांचने की बात है।
बिल्कुल, ये एक आत्म मंथन का बुलावा है कि हम अपने जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक रास्ता हो या दुनियादारी का, कितने सच्चे हैं अपने समर्पण में, अपनी निष्ठा में।
असली होने का मतलब क्या है हमारे लिए, ये सोचने वाली बात है।
जी, ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।